समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
उम्मीद की एक किरण से ही अंधेरा दूर होता है, बस हौसले की मशाल को थामे रहना होगा। सपनों को हकीकत बनाने का यही राज है, हर कदम पर विश्वास को जगाना होगा। बृहस्पतिवार के इस नए सवेरे में इसी सकारात्मक संदेश के साथ आकाशवाणी गोल्ड पर आज सवेरे के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ हैं आज मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार वैष्णवी, एंड गुड मॉर्निंग लिसनर्स। To we welcome you all to our music, I beg your pardon, magazine program, Art Severe, a brand new edition that's going to be. So stay with us and enjoy the program. We begin first, Vaishnavi, then with some news headlines.
जी बिल्कुल। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सिवान, बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा शामिल है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान आज शाम 6 बजे तक चलेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। सभी 45,341 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी की जा रही है। पटना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
The Indian Navy will formally commission the Ikshak ship into the service at Naval Base in Kochi today. The commissioning ceremony will be held in the presence of the Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh K. Tripathi. The Minister of Defence informed that Ikshak will enhance the Indian Navy's hydrographic survey capabilities along with the third vessel of the survey vessel class and the first to be based at the Southern Naval Command.
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कल ताजा बर्फबारी हुई, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी राहत मिली। हिमाचल प्रदेश के आदिवासी जिले लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों तथा पहाड़ी दर्रों में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और आसपास की घाटियों में ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के ऊंचाई वाले इलाकों में कल बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आई। बद्रीनाथ में मंगलवार को भी हल्की बर्फबारी हुई थी। और श्रोताओं, जम्मू और कश्मीर के रेल संपर्क में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए उत्तर रेलवे ने जम्मू संभाग के में परिचालन और पुनर्विकास कार्यों में तेजी ला दी है, जिससे जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी रेल सेवा शुरू की जा सके। अचानक आई बाढ़ के कारण इसकी गति धीमी हो गई थी, लेकिन अब इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कटरा खंड पर है, जहां पुलों, पटरियों और स्टेशनों पर पुनर्विकास का काम चल रहा है।
The US Supreme Court justices have raised doubts over the legality of President Donald Trump's use of International Emergency Economic Powers Act of 1977 to unilaterally set tariffs on imports from more than 100 countries in an attempt to reduce the trade deficit and ignite more manufacturing in the United States. The case, seen as one of the most significant economic cases in years, will determine whether President Trump acted within his powers or overstepped Congress's authority to levy taxes. Chief Justice John Roberts and Conservative Justices Amy Coney Barrett and Neil Gorsuch expressed skepticism over the government's justification for the tariffs.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप विजेता खिलाड़ियों की मेजबानी की। श्री मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को उनकी जीत पर बधाई दी और टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया, खासकर देश भर की लड़कियों के लिए। श्री मोदी ने मोटापे की बढ़ती समस्या पर चर्चा की और फिट रहने के महत्व पर प्रकाश डाला।
And friends, in men's cricket, a fourth T20 international of the five-match series between India and Australia will be played at Carrara Oval in Queensland, Australia today. The match will begin at 1:45 p.m. Indian time. Currently, the series is tied 1-1 after India defeated Australia by 5 wickets in the third T20 international at Hobart. Meanwhile, Australia have made a few changes to their squad for the fourth T20I, with Travis Head and Sean Abbott being released from the T20I squad.
और श्रोताओं, निशानेबाजी की बात करें तो पेरिस 2024 के पदक विजेता मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले आज से मिस्र के काहिरा में शुरू हो रही ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल 2025 में भारत के 40 सदस्य दल का नेतृत्व करेंगे। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर पिस्टल टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ ईशा सिंह और सुरुचि सिंह भी होंगे। वहीं राइफल स्पर्धाओं में 2022 के विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल 10 मीटर एयर राइफल में वापसी करेंगे, जबकि स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में प्रतिस्पर्धा करेंगे। और श्रोताओं, अब रुक करते हैं प्रमुख महानगरों की ओर और जानते हैं वहां की हलचल, साथ ही वो मुख्य खबरें जिनका आपसे है सरोकार। तो आइए जानते हैं चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से क्या खबरें हैं सुभद्रा के पास।
यस वैष्णवी, वी आर स्टार्टिंग दिस सेगमेंट विद चेन्नई मेट्रो न्यूज। द बारीजा आर्ट गैलरी एट दक्षिण चित्र म्यूजियम मुट्टुकाडु इज होस्टिंग थ्रेड्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस, एन एग्जीबिशन ऑफ हैंडमेड क्विल्स क्रिएटेड बाय सिद्धि कम्युनिटी वुमेन्स फ्रॉम कर्नाटका। द क्विल्स आर मेड फ्रॉम स्क्रैप्स ऑफ मद्रास चेक्स डोनेटेड बाय अ चेन्नई बेस्ड ब्रांड दैट प्रमोट्स ट्रेडिशनल हैंड वीविंग। Art historian and textile artist Anita Reddy curated the show to highlight the connection between Madras and the Siddhis. The Siddhi community, descendants of Africans brought to India centuries ago by Arabs and the Portuguese, have long worked as farmers, labourers and artisans. Over time, they blended into Indian society, adopting local crafts such as quilt making, a skill passed down through generations. The exhibition runs until December 28. Getting to Bengaluru now. Karnataka Governor Thavarchand Gehlot urged law students to understand modern technological and global challenges along with traditional legal studies. Speaking at the 7th convocation of Karnataka State Law University in Hubballi yesterday, he said access to justice is a fundamental right and technology helps make it more transparent and efficient. He highlighted initiatives like e-courts, online legal aid and digital legal education as key steps in improving the justice system. Quoting Dr. B.R. Ambedkar, the governor said that law is rooted in equality, liberty and fraternity and must protect human rights and promote social justice. He also advised legal professionals to be guided by their inner sense of justice. Moving on to Hyderabad now, the Telangana government has reconstituted the State Council for Clinical Establishments of CEA through a recent Health Department order. After operating for over a year without a regulatory body, the state's hospitals and clinics will now be overseen by the revived council under the Clinical Establishments Registration and Regulation Act 2010. The CEA will maintain a state register of healthcare institutions, ensure compliance with biomedical waste, fire safety and municipal norms, monitor service quality and suggest rule updates based on new technologies and social needs. वैष्णवी, हाउ अबाउट द रेस्ट ऑफ द सिटीज नाउ?
जी बिल्कुल, और अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों पर। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। सांसद खेल महोत्सव 2025 पूर्वी दिल्ली आज से मयूर विहार स्थित ईस्ट विनोद नगर स्टेडियम में शुरू होगा। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री और पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस खेल महोत्सव में पूर्वी दिल्ली के 18 स्थानों पर एथलेटिक्स, नमोरेन, नमोरन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और कुश्ती सहित 11 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी।
सांसद खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान और विकास करना है। इसके अतिरिक्त शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के साथ खेलों का एकीकरण, पारंपरिक और आधुनिक खेल विधाओं को बढ़ावा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आगे बढ़ने के लिए खिलाड़ियों को समर्थन देना अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है। खेल महोत्सव में 30,000 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। 7 दिसंबर तक चलने वाला यह कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित होगा और 25 दिसंबर को इसका समापन समारोह मनाया जाएगा। खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और आम जनता को इस पहल में भाग लेने और समर्थन देने के लिए आयोजकों द्वारा आमंत्रित किया गया है। आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राजधानी के बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अपने अधीन सभी सड़कों की 200 मेंटेनेंस वैन द्वारा सफाई शुरू कर दी है। इस प्रभावी कार्य में सड़क क्षेत्र से मलबा हटाना, गड्ढों को प्राथमिकता से भरना, सड़क संकेतों की मरम्मत और सुधार सहित अन्य कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अभियान के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, साथ ही संबंधित अफसरों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। और अब मुंबई की ओर रुख करते हैं। आर्ट मुंबई का तीसरा संस्करण 13 अक्टूबर से 16 तारीख तक महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के मेले का मुख्य आकर्षण क्यूरेटेड स्कल्पचर पार्क होगा, जो कि महिला मूर्तिकारों की रचनात्मक आवाजों का जश्न मनाने के रूप में है। ये मेला दक्षिण एशिया और बाहर के प्रमुख कलाकारों, दीर्घाओं और क्यूरेटरों तथा संस्थानों को एक साथ लाएगा, जहां 82 प्रदर्शकों द्वारा लगभग 2,000 कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। बॉम्बे उच्च न्यायालय इस महीने की 12 तारीख को होने वाले मुंबई क्रिकेट संघ के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा। पूर्व कार्यकारी समिति के अध्यक्ष श्रीपद हालवे और अन्य ने स्थापित नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 155 से अधिक क्रिकेट क्लबों को मतदाता सूची में शामिल करने का विरोध किया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 24 अक्टूबर को अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद बिना किसी स्पष्टीकरण के उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था। चुनाव अधिकारी ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ताओं को विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान किया जाएगा। और अब कोलकाता की ओर रुख करते हैं। मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी कोलकाता सहित पूरे पश्चिम बंगाल में घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। इस पहल में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है और वे इस कार्यक्रम में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए SIR प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है, जबकि भाजपा ने पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा समर्थन दिया है। और सुभद्रा, मौसम की बात कर लेते हैं।
यस, ऑफ कोर्स, वी स्टार्टिंग द वन फ्रॉम द साउथ। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। The minimum temperature was 23 degrees Celsius. Maximum will be around 32 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The minimum temperature was 21 degrees Celsius. Maximum will be around 28 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The minimum temperature will hover between a minimum of 22 degrees Celsius and a maximum of 30 degrees Celsius. Now, over to you now for the rest of the news, Vaishnavi.
जी बिल्कुल, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगहों पर धुंध और बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। और कोलकाता में आज आसमान साफ रहेगा और बात करें तापमान की तो न्यूनतम 23 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
All right, Vaishnavi.
बिल्कुल, और अब समय हो चुका है इतिहास के पन्नों को पलटने का और आज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पे जिक्र का। जी,
बिफोर वी गेट टू द हिस्ट्री ऑफ द डे, लेट्स टॉक अबाउट दिस important day. This is preventing environmental exploitation in war times. Today, this is, of course, today is November 6, marks the International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflicts. Declared by the United Nations in 2001, the day forces us to remember the environment as a silent victim of war, a landscape left scarred by poisoned wells, burned forests, and contaminated resources. This day stresses that environmental protection must be an essential, non-negotiable part of all conflict prevention and peace-building strategies. Our commitment to peace must be committed to the planet also, right?
जी बिल्कुल और सुभद्रा आज के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं
या फ्यू थिंग्स हैपेंड दिस डे आई गेस इन स्टार्टिंग विद द ईयर 1528 वैष्णवी शिपरेक्ड स्पैनिश कंकिस्टाडोर अल्वार न्यूनेज कबेत्सा देवाका बिकम्स द फर्स्ट नोन यूरोपियन टू सेट फुट इन टेक्सास
1763 में आज के दिन ब्रिटिश फौज ने मीर कासिम को हराकर पटना पर कब्जा किया था जिससे बंगाल में उनकी सत्ता और बढ़ गई थी। ये घटना पलासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तारवादी नीति का हिस्सा था।
And in 19, you have an event of 1860. Why don't you take that? I have another
जी,
later one.
1860 में अमेरिकी लोकतंत्र ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए जिन्होंने गुलामी के खिलाफ संघर्ष की नींव रखी थी।
Yes, and in the year 1956, British and French troops protecting Allied interests in the Suez Canal battle with Egyptian soldiers in the canal zone. And in 1962, Saudi Arabia officially proclaimed the abolition of slavery by a royal decree issued by King Faisal.
जी बिल्कुल और 1962 में भारत के इतिहास में आज का दिन राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसी दिन 1962 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा परिषद का गठन किया था जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक मामलों पर सलाह देना था। चीन के साथ युद्ध के बाद ये कदम रक्षा नीति और समन्वय में सुधार लाने के लिए उठाया गया जो आज भी प्रभावी है।
Yes, and in 1999, Australia rejected a proposal to break ties with the British monarchy and become a republic. And 2005 this day, Harry Potter and the Goblet of Fire, the fourth film based on the books by J.K. Rowling, premieres in London and becomes the most successful film of the year. I'm sure many of us have seen that. You've seen it, I'm sure. And in 2015, over 38 years after his tragic death, American singer and actor Elvis Presley topped the UK album chart for a 12th time with If I Can Dream, a collection of his classics, featuring orchestral reworkings by the Royal Philharmonic Orchestra. That feat meant that Elvis had made more UK number one albums than any other male solo artist.
2013 में आज के दिन खेल और विज्ञान के दो महान सितारों को सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की गई थी। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रो CNR राव को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में आपको जानकारी देने का। तो पुण्यतिथि में आज सबसे पहला नाम है हीरालाल जेके सुनदास कन्या। भारत की न्यायिक व्यवस्था की नींव रखने वाले हीरालाल जेके सुनदास कन्या बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की और फिर लंदन जाकर बैरिस्टर बने। वापस लौटकर उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत शुरू की जहां उनकी तर्कशक्ति और निष्पक्षता ने सबको प्रभावित किया। 1943 में वे बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने, फिर फेडरल कोर्ट पहुंचे। 1947 में आजादी की पूर्व संध्या पर उनका नाम स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो कन्या ने सुप्रीम कोर्ट की पहली बेंच में बैठकर इतिहास रचा था। उन्होंने पहला संवैधानिक मामला सुना और फिर कई ऐसे फैसले दिए जो आज भी कानून की किताबों में उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
एंड फ्रेंड्स, 1814, दिस इज द सागा ऑफ अ बेल्जियन इन्वेंटर हु लव्ड म्यूजिक, सो ही वेंट अहेड एंड डिजाइन द सैक्सोफोन। एडल्फ सैक्स, एलियस एंटोन जोसेफ, केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेकर्स। And of course, Adolphe Sax started his music education in 1828 at the Royal School of Music in Brussels and was also taking clarinet lessons. Adolphe's idea was to create an instrument that combined the best qualities of a woodwind instrument and a brass instrument. At the 1841 Industrial Exposition in Brussels, Adolphe Sax demonstrated his invention for the first time, the saxophone. And of course, he was appointed an instructor of the saxophone at the Paris Conservatory in 1857.
और श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेता संजीव कुमार को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। गुजरात के सूरत में जन्मे हरिहर जरीवाला यानी संजीव कुमार ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे बॉलीवुड के महान चरित्र अभिनेता कहलाएंगे। गुजराती रंगमंच से शुरुआत करने वाले इस कलाकार को 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी से ब्रेक मिला, लेकिन असली पहचान बनी फिल्म दस्तक से। इसके बाद फिल्म कोशिश में पिता, आंधी में संजीदा राजनेता, शोले में बेजान हाथों वाला ठाकुर, हर रोल में उन्होंने जान डाल दी थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि फिल्म नया दिन नई रात में उन्होंने एक साथ 9 अलग अलग उम्र के किरदार निभाए, 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक। और यहीं पे मैं आपको उनकी फिल्म ये है जिंदगी से उनका मशहूर डायलॉग सुनाना चाहूंगी।
किशन? किराया का मुकुट पहन के कोई किशन बन जाता है? कौन सी ड्रामा कंपनी में काम करते हो?
अगर तुम उतर ही आए हो सौदेबाजी पर तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें 1,000 रुपए 50 दूंगा, बोलो मंजूर है?
मंजूर है, परंतु आनंद तुम अपने सौदे से पलट नहीं जाना, और याद रखना कुंडी का हिसाब अलग होगा, कमीशन का अलग।
ठीक है, वादा मत भूलना।
उनकी खासियत ये थी कि वे कभी हीरो बनने की दौड़ में नहीं रहे, फिर भी त्रिशूल, पति पत्नी और वो अंगूर जैसी फिल्मों में उनके अभिनय आज भी मिसाल है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बचपन से ही दिल की बीमारी से जूझ रहे संजीव को 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में हृदयघात ने छीन लिया। उस दिन बॉलीवुड ने अपने सबसे बड़ा अभिनय सम्राट खो दिया। आइए सुनते हैं उनके सिनेमाई सफर के कुछ खूबसूरत गीत।
तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल,
मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल,
मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, साथी चल।
And friends, 1976, death anniversary of a renowned American physician, David Marine. He was a pathologist and whose substantial research on the treatment of goiter with iodine led to the iodizing of table salt, an important thing in our lives. And of course, during 1917 till 1922, he ran a trial on a large group of schoolgirls to show that an iodine supplement dramatically reduced the incidence of goiter, a major swelling of the thyroid gland in the neck. His results clearly showed the important importance of iodine in our diets. Another Dr. David M. Cowie, promoted the production of iodized table salt, first sold on 1st May 1924 and later throughout the U.S., of course, greatly reducing the incidence of thyroid-related problems. Marine worked on salt iodization for the World Health Organization, further spreading its benefits across the world. And today is also the birth anniversary of Charles Henry Dow, American journalist who co-founded Dow Jones & Company, a financial news service, and the Wall Street Journal. His original contributions include the compilation in 1884 of the first average of selected U.S. stock prices that, with some modification, developed into what we today know as Dow Jones averages. Dow made his reputation as a financial expert when he was the paper's first editor from 1889 till 1902, and his writings for it formed the basis for the Dow theory in market analysis. And friends, Ray Conniff, American band leader and a musical genius, was born this day in the year 1916 in Attleboro, Massachusetts. Ray was exposed to music at an early age. His father was the leader trombonist of the local Jewelry City Band, and his mother played the piano. So as a junior in Attleboro High School, Ray and some of his friends decided to start a dance orchestra. Taking some musical tips from his father, Ray started practicing trombone and wound up playing first trombone for the band. Rest, of course, is history. Ray Conniff and the singers ruled the world with their easy listening songs. Here's one to remember, Ray Conniff. Here goes.
आज हम उस महान महिला को याद कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय रसोई को एक नई पहचान दी, तरला दलाल। वे सिर्फ एक शेफ नहीं थी बल्कि एक ऐसी प्रेरणा थी जिन्होंने घर घर में खाना पकाने की कला को उत्सव बना दिया। उनकी पहली किताब द प्लेयर्स ऑफ वेजिटेरियन कुकिंग ने भारतीय शाकाहारी व्यंजनों को एक नया सम्मान दिलाया। इसके बाद उन्होंने 100 से अधिक किताबें लिखी और उनकी 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। जी बिल्कुल। और आज ही के दिन अहमदाबाद के एक साधारण परिवार में 1986 में जन्मी भावना पटेल ने कभी हार मानना नहीं सीखा। मात्र 4 साल की उम्र में एक भयानक दुर्घटना ने उन्हें आधा पैरालिसिस दे दिया। दाहिना हाथ और पैर सुन हो गए थे, लेकिन भावना ने इसे कमजोरी नहीं बल्कि अपना ताकत बनाया। गुजरात के रेवाड़ी में रहते हुए उन्होंने स्कूल के खेल मैदान से पैरा टेबल टेनिस की शुरुआत की। 2008 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने सबको चौंका दिया। उनके कोच कहते हैं, भाविना खेलते समय भूल जाती हैं कि वे पैरा एथलीट है, बस एक चैंपियन है। और 2021 के टोक्यो पैरालंपिक में भाविना ने भारत को सिल्वर मेडल जिताकर इतिहास रचा था। ये भारत का पैरा टेबल टेनिस में पहला मेडल था।
And one of the finest singers in rock, excellent songwriter Glenn Frey, co-founder of all-American rock band The Eagles, was born this day in the year 1948, Detroit, Michigan. Glenn played guitar with The Eagles as well as piano and keyboards, shared lead vocals with Don Henley. Frey sang lead vocals on Eagles hits like Take It Easy, Peaceful Easy Feeling, Already Gone, Lying Eyes, New Kid in Town, and the one you're listening to, biggest hit of The Eagles, Tequila Sunrise.
Dreamy plan to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town, and she's out running round. A
And today is the birthday of Arturo Sandoval, Cuban-American, a Grammy-winning trumpeter, pianist, and composer who was born in Cuba and received numerous accolades for his work in jazz and Latin jazz. And few Hollywood actors who turn a year older today, Sally Field, Ethan Hawke, and Emma Stone.
और आज जन्मदिन है विजय कुमार कार्णिक का. मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे विजय कुमार कार्णिक बचपन से ही आकाश की ओर देखा करते थे. स्कूल के दिनों में पतंग उड़ाते हुए वे कल्पना करते थे कि एक दिन वे खुद बादलों को चीरेंगे और 1958 में उन्होंने अपना ये सपना पूरा किया और उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में वीरता का परिचय भी दिया था.
एंड फ्रेंड्स, स्टे ट्यून नाउ फॉर कमिंग अप नाउ इज समाचार प्रभात, अ हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार.